परम वंदनीय महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना कर नमस्कार करते हुए भक्तजनों के लिए भगवान की शुभ ज्योति से प्रार्थना करते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो विष्णु पुराण का एक अंश है जिसके सम्मिलित हो जाने से विष्णु पुराण पूरा स्वरूप में आ जाता है। 23,000 श्लोकों का समूह यह विष्णु पुराण है। 23,000 श्लोकों की जो संख्याएं हैं उन 2 और 3 को मिलाते हैं जोड़ते हैं तो योग 5 होता है। जो पांचे पांच महाभूत स्वरूप है उस पंच महाभूतों के द्वारा यह निर्मित शरीर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व के मिलने पर भी यह जो शरीर है वह अधम है। कारण क्या है कि इसकी में से जब प्राण शक्ति चली जाए तो कोई नहीं पूछेगा इसको। भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, तुरंत वही पत्नी रोने लगती और कहती है कि जल्दी हटाओ भय लगता है, वही बेटा देखना नहीं चाहता है। वह कौन सी शक्ति है? वही जो चैतन्य शक्ति है जो प्रभु ने हमें प्रदान किया था। वही जब अपनी शक्ति अपना तेज खींच लेते हैं भगवान विष्णु, तो यह जो सबका कल्याण करने वाला शिव स्वरूपी शरीर है यह शव रूप में बदल जाता है। इसकी शक्ति भगवान अपनी खींच लेते हैं। जठराग्नि काम नहीं करती है, सारे शरीर में जल ही भर जाता है, पानी पानी रहता है। जैसे फ्रिज आप बंद कर दीजिए, उसकी लाइट खींच लीजिए तो बर्फ जितना होगा पिघल के बाहर आ जाएगा, उसी तरह से यह शरीर ठंडा पड़ जाता है जब इसका तेज तत्व ईश्वर का चैतन्यांश जब चला जाता है। वह व्यापक चैतन्य तत्व विष्णु तत्व है जिसके चलते यह शरीर चल रही है। इस शरीर की वाणी रुक जाती है, आंखें देखती तो है लेकिन रूप का दर्शन नहीं होता है। नाक के छिद्र खुले तो होते हैं लेकिन श्वास न आता है न जाता है। लेकिन कोई कहे कि मृत्यु, तो ये 2 शब्द सुन के सब घबराते हैं, जबकि असली दर्शन व्यक्ति के जीवन का मृत्यु से प्रारंभ होता है। अभी महाराज श्री का प्रवचन चल रहा था तो कहा कि मन को मार डालो। भाई मन को मार दिया तो अब संसार रहा कहां, फिर जीना कहां मरना कहां। इस मन को मार डालो। अब ये मन को मारना ये सामान्य बात हम लोगों के लिए नहीं है, संतों के लिए तो है, वो नित्य लगाए रहते हैं अपना, संसार को उन्होंने मार डाला है इसलिए साधु हुए। लेकिन हम गृहस्थियों के लिए ये बड़ी तकलीफ वाली बात है, हम मन को कैसे मारे। तो कहा मन को नहीं मार सकते हो तो अनासक्त रूप से रहो, भगवान को अर्पण करो और अर्पण के बाद जो मिले उसे खाओ तो दोष निकल जाएगा। जो तुम्हें बनाया है, जो तुम्हें भेजा है उसको अर्पित करो और जो उसके अनुचर हैं, परिचर हैं, जो उसके स्वरूप हैं इस भूत में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शंत, तिथियां, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इन सब की उपासना करते रहो, सबका सेवन करते रहो, तीर्थों का सेवन करो, संतों का सत्संग करो। तो जब आप उसमें लगे रहोगे तो आपका मन इधर उधर विचलित नहीं होगा। इसके लिए उपासना पद्धति बतला दिया, व्रत पद्धति बतला दिया कि व्रत रखो कि आज 2 घंटा हम कुछ नहीं खाएंगे, 4 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, 3 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे करके अपने अभ्यास को बढ़ाओ। एकादशी के दिन हम व्रत रहेंगे, द्वादशी को मात्र 1 बार खाएंगे, नहीं एकादशी को हम 11 बार नहीं खाएंगे, 11 बार फलहार नहीं करेंगे, 11 वस्तु नहीं खाएंगे, ये और भी बड़ी बात है। 11 वस्तु का तात्पर्य है 11 इंद्रियां, हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां चाहती है, आंख यह चाहती है कि हम रूप सुंदर सुंदर देखें मन से नियंत्रित होकर के, नाक चाहती है हम खूब सुंदर सुंदर पुष्पों को सूंघें, जिह्वा चाहती है हमें अच्छा अच्छा रस पान मिले, मधुर अम्ल कटु कषाय सभी प्रकार के रस हमको मिले, 56 प्रकार का भोग व्यंजन हमें मिलता रहे। कान चाहते हैं कि हम अपनी खाली प्रशंसा सुने और जो हमारे रुचि के फिल्मी गीत हैं अपने लोगों की प्रशंसा सुने, दूसरे की प्रशंसा से ईर्ष्या होती है। ये जो प्रकल्प है ये 5 ज्ञानेंद्रिय। चमड़ी चाहती है कि एसी में रहे, गर्मी आ रही है, ठंडी है तो गर्म में रहे। ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को धीरे धीरे प्रभु के तरफ मोड़ने के लिए व्रत है। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ यदि जाए तो किसी के अहित करने के लिए न जाए, हित के लिए जाए, यह व्रत है। किसी को मारने के लिए न उठे, किसी का कुछ कचरा साफ करने के लिए उठे, मंदिर को साफ करने के लिए जाए, पैर जाए तो मंदिर चल के जाए, कहीं गड़बड़ सड़बड़ जगह पे न जाए। पैरों की उपयोगिता तभी है जब यह भगवान के मंदिर तक चल करके जाए, अथवा किसी जीव के हित करने के लिए कहीं चल के जाए, चोरी करने के लिए न बढ़े। जितनी भी हमारी इंद्रियाएं हैं और भी आंतरिक बाह्य जो इंद्रियाएं हैं, ये सभी इंद्रियां यह समझ ले कि यह पूरा संसार ईश्वर के द्वारा निर्मित है और ये ईश्वर की एक सेवा है, सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, इसलिए सबको अर्पित करे। कहा सबको कहां से अर्पित कर पाएंगे, इतने सारे जीव जंतु हैं, किसी को अर्पित नहीं कर पाएंगे। कहा कोई बात नहीं, आप सबको अर्पित नहीं कर सकते हो, एक किसी इष्ट देव को आप चयन कर लो। कहा महाराज बड़ी मुश्किल है, शिव जी को यदि उपासना करते हैं तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं तो माता जी नाराज हो जाएंगी कहीं, फिर हनुमान बाबा हैं वो नाराज हो जाएंगे, फिर गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे, इतने सारे देवता हैं, किसकी किसकी पूजा करे। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो हम तुमको इसका जवाब देते हैं। गंगा जी के किनारे ले गए और कहे कि एक नाव वाले को बुलाओ। नाव वाला आता है कि ये ठीक नहीं है, दूसरी नाव बुलाओ। दूसरी नाव आई, ये भी ठीक नहीं है, तीसरी बुलाओ। तीसरी नाव आई, कहते ये भी ठीक नहीं है। चौथी नाव आई, कहे ये भी ठीक नहीं है। तो शिष्य ने बोल दिया, महाराज आप क्या ये तमाशा रचे हो, कोई भी नाव नाव है, हमको उस पार चलना है ना। गुरुदेव ने कहा बस जो मुझे कहना था वो तूने कह दिया। कोई भी एक देवता को यदि शिव हो चाहे केशव हो चाहे गणेश हो, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथजु शाम, रुचि जहां आपकी स्थिर हो जाए, इसलिए इतने सारे देवता हैं, उनके माध्यम से आपको भवसागर को तैर जाना है। किसी का किसी से विरोध नहीं है, विरोध हमारा और आपके मन में बैठा है, इसलिए हम सोच लेते हैं कि ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। नाराज होना इन सांसारिक जीवों का कार्य है। एक देवता के अंदर सभी प्रकार के देवता बैठे हुए हैं, इसका प्रमाण है, पुराणों में ही प्रमाण आता है कि भगवान विष्णु सर्वत्र प्रविष्ट है, इसलिए व्यापक है। और जो विष्णु है वह सबका कल्याण करते हैं, तो कल्याण करने से शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण।